نمدم صلی اللہ رسول کریم اعوذ باللہ من شیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین حضرات. اسی صاحب نے سورہ سبا کے فضائل و خصائل بیان کرنے کو کہا ہے. کچھ اتوار پہلے میں نے سورہ تغابن کے بارے میں آپ سے کچھ عرض کرنے کی کوشش کی تھی کہ اس کو بیان کر سکوں آپ کے سامنے. جس طرح سورہ تغابن پڑھنے سے انسان جو کچھ غلطیاں اور خامیاں پہلے کر چکا ہے روحانی حوالے سے اس کا ازالہ ہو جاتا ہے. اسی طرح سورہ سبا کے جو خصائل دوسرے ہیں وہ تو شاید میں عرض نہ کر سکوں اس لیے کہ نہ میں میرے علم میں ہیں نہ میں وہ بتا سکتا ہوں آپ کو. لیکن یہ بات میں ضرور جانتا ہوں کہ سورہ سبا اگر کوئی شخص ریگولرلی ایک لمبے عرصے تک رات کو پڑھتا رہے تو اس کی فاؤنڈیشنز بلڈ ہو جاتی ہیں روحانی ترقی اور روحانی علم کے لیے. اس کے یہ اثرات تو میں جانتا ہوں وہ میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں. یہ سورہ مکی ہے. اب نبوت کے اعلان کے بعد کی جو 12 سالہ زندگی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, نبوت کی اس 12 سالہ زندگی میں یہ کس وقت سورہ سبا نازل ہوئی اس کا تعین ذرا دشوار ہے, لیکن گمان یہ ہے کہ یہ غالباً اس کا مڈ تھا کہ نبوت کا اعلان ہوئے 4-5 سال گزر چکے تھے جب یہ سورہ نازل ہوئی ہے. اس کی 54 آیات ہیں اور اس کی آیت نمبر 15 میں سبا کا لفظ استعمال ہوا ہے اور اسی نسبت سے اسے سورہ سبا کہتے ہیں. اس کی ابتدا سورہ سبا کی رب تعالیٰ کی حمد و ثنا سے ہے اور اس میں حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد کچھ آیات قیامت کے وقوع پذیر ہونے کا بیان ہے کہ چونکہ اس وقت کفار دعوت اسلام کو بالکل نہیں مان رہے تھے اور دعوت اسلام کا وہ مذاق اڑاتے تھے اور قیامت سے منکر تھے, تو اسی لیے رب تعالیٰ نے اس کی ابتدا اپنی حمد و ثنا سے کی اور پھر دوسری چیز رب نے وہ بیان کی جس کو اہل مکہ ماننے کو تیار نہیں تھے کہ قیامت بپا ہوگی. تو رب تعالیٰ نے قسم کھا کر کہا کہ قیامت ضرور بپا ہو کر رہے گی, قیامت ضرور قائم ہوگی. آگے چل کر اسی سورہ میں رب تعالیٰ نے اپنے علیم و خبیر ہونے کو بیان کیا ہے کہ زمین و آسمان میں, اس کا خلاصہ میں بیان کر رہا ہوں, لفظی معنی نہیں ہے یہ, کہ زمین و آسمان میں جو چیز اوپر سے نیچے کی طرف آتی ہے اور نیچے سے اوپر کی طرف جاتی ہے ان سب سے رب تعالیٰ واقف ہے. یہ تو اس سورہ کا خلاصہ ہے کہ رب تعالیٰ نے اپنا آپ متعارف کفار کے سامنے اس طرح سے کیا کہ رب جو ہر طرح کی حمد و ثنا کا سزاوار ہے, وہ رب جو مالک ہے یوم الدین کا اور جو علیم و خبیر ہے جو ہر چیز سے واقف ہے, لیکن اس کے جو اثرات انسان پہ مرتب ہوتے ہیں جیسے میں نے عرض کیا, وہ انسان کے اندر جو کثافت جمع ہے اس کی روح کی کثاوت کو دور کر دیتی ہے یہ سورہ. اس کے یہ فوائد ہیں. اور ہم میں سے اکثر لوگ یہ پوچھتے رہتے ہیں کہ حروف مقطعات میں سے کوئی چیز پڑھنے کو مل جائے یا ان کی روح کی مطابقت رکھتا ہوا کوئی لفظ یا حرف ان کو مل جائے, تو ہم خطا کھا رہے ہیں ایک جگہ کہ بغیر فاؤنڈیشن تیار کیے ہم उन हरूफ से कोई फायदा उठा नहीं पाएंगे। तो ये वो फाउंडेशन तैयार कर देगी सूरह, अगर इसको हम तवातर से पढ़ेंगे, बाकायदगी के साथ पढ़ेंगे सूरह सबा को नमाज ईशा के बाद, तो एक लंबा अरसा लगता है, तकरीबन 1.5 साल का अरसा लगेगा, तो फाउंडेशंस तैयार हो जाती हैं और इंसान रब की तरफ ऐसा रागिब होता है कि वो बखुशी उसकी इबादत करता है। तो इसको आप पढ़ लीजिए अगर पढ़ना चाहें तो। इन्हीं साहब ने दूसरा सवाल किया है कि जब मुर्शिद की हिदायत पर मुरीद किसी बुजुर्ग के मजार पर पीरियोडिकली हाजिर होते हैं तो क्या ये सच है कि वो साहब मजार इस मुरीद को डायरेक्ट फैज देने के बजाय उसका हिस्सा उसके मुर्शिद को दे देते हैं, और यूं मुरीद को इन बुजुर्ग से फैज अपने मुर्शिद के थ्रू मिलता है। असल में ये रूहानी इल्म, रूहानी फैज, मुर्शिद, इन सब के बारे में हम सभी लोग बमा मेरे बहुत सी खुशफहमियों में और गलतफहमियों में मुब्तला हैं। हमने न जाने क्या समझ रखा है इस रूहानी फैज को, मुर्शिद को, कोई ऐसी माफ़ोकुल फितरत चीजें बना दी हैं जिसका हकीकत से कोई दूर का भी वास्ता नहीं है। मैंने यहां बहुत अरसा पहले एक अर्ज किया था कि जब हम किसी साहिब इल्म के मज़ार पर हाजिर होते हैं और वहाँ खड़े होकर फातिहा पढ़ते हैं, कलाम इलाही की तलावत करते हैं और फिर रब के हजूर ये अर्ज करते हैं कि या बारी ताला, ये मैंने तेरा कलाम जो मैंने पढ़ा है, ये मैं तेरे और तेरे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजूर बतौर नजर पेश करता हूँ, इसे तू कबूल फरमा। और इसे कबूल फरमा के इसका सवाब तो मेरी तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक की खिदमत में बतौर नजराना पेश कर दे, और उसके बाद फिर मुख्तलिफ हम के तमाम अंबिया, तमाम अली अकराम, तमाम मुसलमान जो दुनिया से जा चुके हैं उनकी रूहों को इसका सवाब बख्श दे, और बिलखसूस ये तेरा नेक बंदा जो यहां सो रहा है, तो नाम उनका ले लें, उनकी रूह को बख्श दे। तो रब ताला अपनी रहमत के सदके उस कलाम पाक के तलावत करने के सवाब को उस बुजुर्ग के नाम अमाल में लिख देता है। और ये याद रखिए कि इंसान खा किसी मकाम पर ही क्यों ना पहुंचा हुआ हो, दुनिया से चले जाने के बाद उसका एमाल का सिलसिला मुनकता हो जाता है, वो इस पर कादिर नहीं होता कि अपने नामा एमाल में सवाब या गुनाह का इजाफा कर सके। तो जब कोई शख्स उस साहिब मजार के नामा एमाल में ये सवाब लिखवाता है तो उस साहिब मजार को उस इंफॉर्मेशन दे दी जाती है कि फला शख्स ने तुम्हारे नामा एमाल में इतने सवाब का इजाफा कराया, तो वो साहिब मजार की रूह मशकूर होती है उस आदमी की जो उस सवाब को उसके नामा एमाल में अल्लाह के हजूर दरख्वास्त करके लिखवा रहा है। तो एहसास ममनूनियत के तहत वो उस साहिब इल्म की रूह अल्लाह के हजूर दुआ करती है कि या बारी ताला, जिस शख्स ने मेरे साथ ये नेकी की है कि मेरे नामा एमाल में सवाब लिखवाया है, तू भी उसके साथ एहसान का सलूक कर, ये वो दुआ करती है। बाकी यहां तक तो मेरा ख्याल है चीज आपके जहन में क्लियर हो जानी चाहिए। रह गया इक्तसाब फैज का मामला कि मुर्शिद के पास बैठे हैं, वो भी मैंने यहां शुरू में अर्ज किया था कि जब कोई शख्स किसी शख्स के हाथ पर बैत होता है, उसका नाम उस आदमी की, उस साहिब इल्म की स्क्रॉल में उसके नाम के नीचे लिख दिया जाता है, और ये फिर नाम रोजे हिसाब तक कायम रहता है, जब हिसाब किताब शुरू होने लगेगा तो ये नाम कट जाएंगे, वहां से आजाद हो जाएंगे सब लोग। हिसाब किताब में आपका मुर्शिद न तो कोई सिफारिश कर सकेगा न कोई आपकी मदद कर सकेगा, ये भी मैं क्लियर कर दूं आपको। आपके मुर्शिद वो नहीं कर पाएंगे जो आप सोचते हैं। ये एजाज रब ताला ने सिर्फ और सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही को बख्शा है कि वो शफी हैं, साहिब शफात हैं। सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही की ज़ात मुबारका है जो शफात कर सकेगी अपने उम्मती की, उसके अलावा किसी शख्स को ये हासिल नहीं है कि वो ये जुरत कर सके कि रब के हजूर अपने किसी मुरीद की सिफारिश कर दे। ये सब मिथ है जो बयान की जाती है। मुर्शद साहब जो हैं आपके, उनका काम सिर्फ एक है कि वो आपको तरबियत के जरिए से जिंदगी की आलाइशों और गुनाहों के जो पेचदार रास्तों में हम खोए हुए होते हैं, वो तरबियत के जरिए से आपकी उंगली पकड़ के आपको उन उलझे हुए रास्तों में से निकाल कर उस पॉइंट पर लाके खड़ा कर देते हैं जो सरात मुस्तकीम की इब्तदा है, और उसके बाद वो आपको आपका जो भी इल्म का हिस्सा है वो आपके हवाले कर देते हैं, और उसके बाद वो आपको ये कह देते हैं कि अब आपकी अपनी मेहनत है, मेरे पास जो तुम्हारा हिस्सा था वो मैंने तुमको दे दिया, अब जितनी इस पर मेहनत करोगे, जितने साले अमाल करोगे, उतनी तेजी से इस रास्ते पर आगे बढ़ते चले जाओगे, वरना राह खोटी हो जाएगी। ये टोटल मुर्शद साहब का काम है जिसके बारे में हम ऐसी ऐसी खुशफहमियों में मुब्तला हैं कि मुआज़ल्लाह, अल्लाह मुझे मुआफ फरमाए इन अल्फाज के लिए, कि हम मुर्शद साहब को वो दर्जा दे देते हैं जिसकी कुदरत सिर्फ और सिर्फ रब के हाथ में है। तो ना आपके मुर्शद इस पर कादिर हैं कि आपको किसी मुसीबत से बचा सकें, इसलिए कि वो खुद अल्लाह के मोहताज हैं, ना आपके मुर्शद साहब बहसियत इंसान के इस पर कादिर हैं कि आपका कुछ भला कर सकें, ना इस पर कादिर हैं कि आपका कोई नुकसान कर सकें। अगर कुछ कर सकते हैं तो आपकी रहनुमाई है और आपकी ट्रेनिंग है, इन दैट्स ऑल, नथिंग मोर देन दिस। आपकी अपनी मेहनत है, जो कुछ मिल गया पढ़ने को उसमें मेहनत करेंगे, अमाल नेक होंगे, तरक्की करते चले जाएंगे, वरना वहीं के वहीं खड़े रह जाएंगे। ये नहीं हो सकता कि आपके मुर्शद साहब आपको अपने कंधों पर बिठा के उस रास्ते पर सर पर दौड़ते चले जाएं, ये मुमकिन नहीं। तो अगर कोई साहिब इल्म आपको नवाजना चाहते हैं तो वो मोहताज नहीं है इस बात के कि आपका हिस्सा वो आपके पहले मुर्शद साहब को दें और मुर्शद साहब उसमें अपनी कमीशन काट के फिर आगे आपको पास ऑन कर दें। वो अगर कोई साहिब इल्म आप पर मेहरबान हो गए तो अता कर देंगे, मिल जाएगा, लेकिन उसकी इत्तला आपके मुर्शद को जरूर होती है, वो जरूर जान लेंगे कि आपको इल्म दिया गया है। अब मुर्शद साहब का दिल इतना बड़ा होना चाहिए कि वो उसको हजम कर जाए। इन्हीं साहब के तीसरा सवाल है कि कभी कभी बहुत शिद्दत से एहसास होता है कि ये दुनिया खेल तमाशा है और हम पुतलियां, या ये जिंदगी एक बसात है और हम उस पर सजे हुए मोहरे जिनकी प्लेसमेंट्स तब्दील होती रहती हैं। पुतली और मोहरा होने का एहसास अंदर ही अंदर अजब बेबसी की कैफियत पैदा कर देता है। क्या ऐसा सोचना गुस्ताखी तो नहीं? अज़राह-ए-करम, अगर कर्म करने वाला इंसान होता, ऐसा ज़र्फ होता तो अपने ऊपर न कर लेता मैं, ताकि इस कैफियत को डायरेक्शन मिल सके। और प्लीज दुआ भी फरमा दीजिए। जब इंसान अपने माइंड में क्लियर होता है एक बात पर, आका कौन, मालिक कुल कौन, कादर मुतलिक कौन, मेरी हैसियत क्या, तो फिर कंफ्यूज नहीं आते। लेकिन जब हम अपने माइंड में क्लियर नहीं होते तो फिर कन्फ्यूज पैदा होते हैं। मैंने यहां शायद एक बार ये अर्ज किया था कि हम वो हैं जिन्होंने अपनी जात के बारे में बहुत से बुत गढ़ लिए हैं, और उन बुतों को हम अपनी जात के अंदर न सिर्फ पालते रहते हैं बल्कि उनकी पूजा करते रहते हैं। कहीं अना का बुत है, कहीं इल्म का बुत हमने बनाया है, उसकी पूजा की है, कहीं हमने अपने आप को इज्जतदार होने का बुत बना के उसकी पूजा की है, और तो और कहीं हमने आजजी के तकब्बुर की पूजा की है। ये तकब्बुर सबसे बुरा है कि आजजी का तकब्बुर पैदा हो जाए इंसान में। जिन बुतों को हम अपने अंदर घर के पालते हैं और उनकी पूजा करते हैं, ये वो बुत हैं जो हमें चीजों की असल तह तक जाने नहीं देते। ये जो मैं का बुत है, जब इंसान को अपनी हैसियत का एहसास कभी कभी होने लगता है कि मैं क्या हूं, अल्लाह के हाथ में एक पुतली, मैं क्या हूं, एक ऐसा मोरा जिसको शतरंज खेलने वाला जहां चाहे जब चाहे वो मूव कर दे, जब चाहे वो पेटवा डाले, तो वो जो मैं का बुत है वो लरजता है इस एहसास से, और हमें ये होता है कि ये क्या हुआ, मैं अंदर से खाली हो गया। अगर ये चीज कहीं क्लियर हो दिमाग में कि मेरा खालिक ही मेरा मालिक है, न सिर्फ मेरा मालिक है, वो मालिक कुल है, वो कादर मुतलिक है, मेरी अपने रब के सामने बसात एक मोहरे की भी नहीं है, वो सिर्फ मुझे नहीं पालता बल्कि पूरी कायनात को पालता है, पूरी कायनात का पालनहार है, मेरा रोल महदूद है, एक लिमिटेड स्फीयर के अंदर मुझे ऑपरेट करना है, जिस मकसद के लिए मुझे पैदा किया गया है मैंने उस मकसद को पूरा करना है, और मेरी नुकेल मेरे रब के हाथ में है जो कादर मुतलिक है, तो जहां वो चाहेगा मुझे इस्तेमाल कर लेगा, जहां चाहेगा वो मुझे ढील दिए रखेगा। तो जब ये कंसेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं तो हम जब देखते हैं कि हमारी कोशिश के बावजूद कोई काम नहीं हो रहा, हम मूव करते हैं मशरिक की जानिब और सफर हमारा मगरिब का तय होता है, तो हम जान लेते हैं कि हमारा मालिक यूं ही चाहता था। क्योंकि दिमाग में एक बात बड़ी क्लियर है कि मैं कुछ नहीं, वही सब कुछ है, हां ये उसकी इनायत है कि मुझे ढील देता है, हां ये उसकी इनायत है कि मुझे कुछ इख्तियार बख्श देता है, लेकिन चूंकि ये अता है उसकी, ये इख्तियारात, ये ढील, ये नाज जो उठाता है वो उसकी अता है, तो वो उस अता को किसी वक्त विड्रॉ कर सकता है, मेरा इस्तेहकाक नहीं है ये। तो जब ये बातें हमारे जहन में क्लियर हो जाती हैं तो फिर ये खाली होने का एहसास नहीं होता। जहां ये खला पैदा हो दिल में, जहन में, इस खला को हम इससे पुर कर दें कि मैं कौन, मेरी हैसियत क्या, सब तू ही तू है, तू जो चाहता है करता है, जैसे चाहता है मुझे इस्तेमाल करता है, इसलिए कि मैं तेरा बंदा हूं, तेरी तखलीक हूं मैं। लीजिए खलापुर हो गया, इतनी सी बात है। सिर्फ ये बुत निकाल दीजिए अपने अंदर से, लेकिन ये निकलते मुश्किल हैं। बारगाहे इलाही में इल्तजा, दरख्वास्त और फरियाद है, हर वो खैर आपका मुकद्दर हो जो अल्लाह के महबूब और हमारे प्यारे रसूल आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वालेही वसल्लम ने अपनी हयात तैयबा मुबारक शरीफ में रब तआला से तलब फरमाई, आमीन। हर उस शर से आप महफूज और मामून रहें जिससे पनाह के लिए सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वालेही वसल्लम ने बारगाह रब्बी में मुतअद्दिद बार मुख्तलिफ मौकों पर सजा फरमाई, आमीन। जिन साहब ने मुझे ये दुआ दी है अल्लाह ताला उन्हें इसकी जजा दे, मैं बहुत मशकूर हूँ खुद, मुझे तो कभी ये तौफीक नहीं हुई कि मैं रब के हजूर को ये ऐसी दुआ मांग लूँ। मेरी दुआएं तो वो महदूद होती हैं, या अल्लाह नवाज शरीफ की सारी दौलत उससे छीन के मुझे दे दे, उसे गरीब कर मुझे अमीर कर दे। मैं मेरी तमाम दुआएं उसी के रिवॉल्व करती रहती हैं। अल्लाह आपका भला करे जिन्होंने ऐसी दुआ दे दी मुझे। ये किसी साहब ने तहकीक की है और वो भेजी है कि सूरह यासीन की 83 आयात में से 70 आयत का इख्तिताम नून पर, 12 का इख्तिताम मीम पर और 1 आयत का इख्तिताम सीन पर होता है। इसी तरह सूरह रहमान की 78 आयात में से 69 आयात का इख्तिताम नून पर, 7 का इख्तिताम मीम पर और 2 आयात का इख्तिताम रे पर होता है। इन दोनों सूरतों में इस हवाले से आपस में गहरा ताल्लुक महसूस होता है कि ज्यादा आयात का इख्तिताम हर्फ नून पर और उसके बाद हर्फ मीम पर होता है। क्या इन दोनों सूरतों का खास लफ्ज इख्तिताम होता है या किसी खास तरफ इशारा करता है? इन दोनों सूरतों में एक रब्त है, एक ताल्लुक है। सूरह रहमान का ताल्लुक मालिक से है और सूरह यासीन का ताल्लुक उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है। ये ताल्लुक तो वहां मौजूद है कि एक ने एक सूरह में मालिक का बयान है और दूसरी सूरत की इब्तिदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक से हुई है। इसमें मैं अर्ज तो कर दूं बहुत कुछ, लेकिन ये हरूफ मक्तात में आपने फंसाया हुआ है मुझे कि इसको बयान किया जा नहीं सकता, वरना तो एक बहुत आसान सा मैं आपको जवाब दे दूं कि हर्फ नून का ताल्लुक कायनात की किस डायमेंशन के साथ है और वो जो 70 आयात का इख्तिताम नून पर होता है उन आयात का मकाम क्या है और वो नून पर इख्तिताम क्यों करती हैं। जवाब आसान है लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं उसको बयान ना कर सकूं शायद। इसी तरह लफ्ज मीम जो है इसको यूं समझ लीजिए, मैं पहलू बचा रहा हूं कुछ अर्ज करने से इस पे, क्योंकि हरूफ मक्तात खुल जाएंगे कि सूरह रहमान पढ़ने से आप पे बरकतों की जो बारिश होती है वो दोनों जहान की नेमतें हैं, इसलिए कि उसका ताल्लुक बराह रास्त मालिक से है। सूरह यासीन पढ़ने से इंसान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब जाता है, वो मोहब्बत बेदार होती है, इसलिए कि उस सूरह का ताल्लुक बराह रास्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका से वो मंसूब है। इससे ज्यादा मैं इस मामले में अर्ज कर नहीं पाऊंगा, वरना जरूर अर्ज कर देता आपसे। किसी साहब ने शायद इन्हीं साहब ने सवाल पूछा हुआ है, शाह साहब आपका काफी वक्त अशफाक अहमद साहब, कुदरतुल्लाह शाहब, वासिफ अली वासिफ के साथ गुजरा है, कभी किसी लेक्चर में आप इन हजरात के बारे में तफसील से बताएं, खासतौर पर अशफाक साहब के बारे में। इसमें शायद थोड़ी सी गलतफहमी है, अशफाक साहब के साथ मुकाबलतन ज्यादा वक्त गुजरा के वो कमाल मेहरबानी फरमाते थे। 1990 से अक्सर का तशरीफ ले आते थे, उनसे काफी देर इसी घर में इसी कमरे में बड़ी बड़ी लंबी सिटिंग्स हुई हैं, लेकिन बहुत करीब से मैं जानता नहीं हूं। वासिफ अली वासिफ साहब अपनी जिंदगी के आखिरी आयाम में यहां तशरीफ लाया करते थे, लेकिन उन दोनों बहुत बीमार थे, वो तो उनसे मेरी कोई लंबी चौड़ी मुलाकात नहीं, शायद 15-20 मरतबा आए होंगे मेरे पास हफ्तावार, और कुदरतुल्लाह शहाब साहब के साथ तो कभी इत्तेफाक नहीं हुआ मुझे मिलने का, और अगर कभी मुलाकात हुई हो तो मुझे याद नहीं। جہاں تک ان صاحبان کی بات ہے، یہ بہت علم والے لوگ تھے، میرے لیے تو وہ اتنے بلند تھے کہ ان کی طرف دیکھنے کی کوشش میں میری پگڑی سر سے گر جائے، اتنے بلند تھے مجھ سے. کیونکہ جب میں اپنے آپ کو دیکھتا تھا تو پتہ یہ چلتا تھا کہ میں کوئی علم کی الف بے بھی نہیں جانتا، واقعی نہیں جانتا، معلوم نہیں کسی چیز کے بارے میں کیا چیز کیا ہے. لیکن یہ پڑھے لکھے لوگ تھے اور سب بڑے لوگ تھے. بابا یحییٰ صاحب کے بارے میں تیسرا سوال انہوں نے کیا ہوا ہے. بابا یحییٰ صاحب سے میری ملاقات نہیں ہے، لیکن بڑے بھلے آدمی یقیناً ہیں، یہ اچھے آدمی ہیں، اللہ کے نیک بندے ہوں گے، یقیناً ہوں گے. یہ انہوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں. بات یہ ہے کہ یہ اس بات کا جواب دینے کے لیے بالکل ایسا ہے کہ اگر ایک اسپیشلسٹ سرجن ہے، اس اسپیشلسٹ سرجن کے بارے میں کامنٹ کرنے کے لیے انسان کو اس اسپیشلسٹ سرجن سے بڑا ہونا ضروری ہے، تاکہ اس کے استعداد کو سمجھ سکے، اس کے علم کو سمجھ سکے، اس کے کام کو سمجھ سکے. اور ایک آدمی جو سرجری کی اے بی سی نہیں جانتا، وہ اتنے بڑے سرجنز کے بارے میں کیا رائے دے سکتا ہے، سوائے اس کے کہ یہ کہے کہ صاحب وہ تو بڑے قابل لوگ ہیں. تو بالکل یہ حیثیت میری ہے کہ میں زندگی بھر نہ کچھ پڑھ سکا نہ کچھ جان سکا، علم سے ہمیشہ بے بہر رہا. علم کیا ہوتا ہے سچی بات ہے میں نہیں جان سکا کبھی. تو جب میں کسی پڑھے لکھے آدمی کو دیکھتا ہوں تو لامحالہ میں متاثر ہوتا ہوں. اور میری نظر میں 10 جماعت پڑھا ہوا انسان بھی اور پی ایچ ڈی کیے ہوئے انسان بھی بہت بڑا ہوگا، کیونکہ میں خود پڑھے لکھ نہیں سکا. تو یہ چاروں صاحبان جن کا ذکر کیا ہے انہوں نے، یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں اور اعلی پائے کے لوگ ہیں. میں تو ان کے بارے میں یہی کچھ عرض کر سکوں گا آپ سے. انہیں صاحب کا چوتھا سوال ہے کہ گھر میں اگر ماں بہن بیوی بیٹی یا کوئی دوسرا فرد نماز نہیں پڑھتا تو اس پر کس حد تک سختی کی جا سکتی ہے، وہ نماز باقاعدگی سے ادا کرے. صاحب نہ مجھ پہ کسی نے سختی کی، نہ میں نے کسی کو سختی کرتے دیکھا. سختی سے لوگوں کو میں نے دور بھاگتے دیکھا ہے چیزوں سے، کبھی قریب آتے نہیں دیکھا. اگر انسان خود نماز پڑھتا ہے تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ گھر کے لوگ اس کو دیکھ کے نماز پڑھنا نہ شروع کر دیں. جب انعامات ملتے ہیں تو پھر ہر ایک کا دل للچاتا ہے کہ میں بھی یہ انعام حاصل کروں، تو راغب ہو جاتے ہیں. لیکن سختی سے انسان میں ضد پیدا ہوتی ہے، اس لیے فقیر لوگ، اولیاء اکرام، وہ کبھی کسی کو تلقین نہیں کرتے کہ نماز پڑھو، یہ کرو، وہ کرو. لیکن حیران کن طریقے پر ان کے پاس جانے والے لوگ عبادات کو سر انجام دینے لگتے ہیں، عبادت گزار ہو جاتے ہیں. تو بھائی یہ سختی اور ڈنڈا کہیں کسی الماری میں رکھ کے تالا لگا دیجئے، سنت پہ عمل کریں اور لوگوں کو پیار محبت سے اللہ کی راہ کی طرف بلائیے. اگر انسان باعمل ہے تو اس کی زبان میں تاثیر ہوگی، اس کی زبان سے نکلنے والی ہر بات دل میں اترتی چلی جائے گی اور وہ دل پر اثر رکھے گی. سختی سے دور رہیے. ایک سوال ہے، آپ اکثر کہتے ہیں کہ فقیر سے علم حاصل کرو، کیا یہ علم لدنی ہے یا وظائف والا علم یا دانائی کی باتوں والا علم؟ اردو میں ایک زمانے میں ایک محاورہ پڑھا تھا کہ موسیٰ ڈرا موت سے، موت سامنے کھڑی. میں جس شدت سے بھاگتا ہوں وظائف کی بات سے اور عملیات کی بات سے، وہ بات میرے سامنے کھڑی دکھائی دیتی ہے ہر مرتبہ. یہ فقیر سے تو آپ کو علم لدنی ملے گا. علم لدنی वो इल्म है जो दूसरे तमाम उलूम पर मुहीत है, वो उसका अहाता करता है। तो जिस शख्स को इल्म लदुनी हासिल हो गया उसको तमाम उलूम मज़खुद आ जाते हैं। तो फकीर या दरवेश या वली अल्लाह या साहिब इल्म, उन सबको इल्म लदुनी ही हासिल होता है। डिग्री का फर्क है, किसी को कितना, किसी को कितना, किसी को कितना। तो जब उससे हम मिलते हैं फकीर से और कोशिश करते हैं कि उससे हम वो इल्म छीन लें, किसी तरह उससे इल्म बटोर लें, ठग लें, तो वो इल्म लुदनी ही होता है। और जो ही उस इल्म लुदनी का हिस्सा मिलता है हमें, तो हमारे अंदर अजीबोगरीब तब्दीलियां आने लगती हैं। अक्सर लोग मुझसे ये पूछते हैं कि साहब इल्म मिलेगा तो क्या होगा, हम तो पिछले 45 साल से फला जगह बैठे हैं, इल्म नहीं मिलता। तो मेरा उनसे एक सवाल ये होता है कि आपका क्या ख्याल है कि जब आपको इल्म लुदनी मिलेगा, आपको फैज हासिल होगा, तो क्या होगा? आपके हाथ चार हो जाएंगे या आपकी आंखें चार हो जाएंगी, दिमाग एक की बजाय तीन चार हो जाएंगे, या कोई जिस्मानी तब्दीली आएगी कि सींग निकल आए, दुम निकल आए, कुछ ऐसा हो जाए? वो दरहकीकत जब लोग ये कहते हैं कि हमें फैज नहीं मिला, उनसे मुराद ये होती है कि अभी तक तो ये हुआ नहीं कि सामने बैठे हुए साहब पे मुझे गुस्सा आया तो मैंने उसकी तरफ घूर के देखा, वो बेचारा मक्खी बन के दीवार से चिपक गया। ये तो अभी तक कुदरत हमारे अंदर आई नहीं है। भाइयों, ये कोई ऐसी तब्दीली नहीं आती इंसान में, बल्कि उसमें तो आजजी पैदा हो जाती है। और एक साहब ने बड़ा खूबसूरत मुझे जवाब दिया, उन्होंने कहा कि वो आजजी क्या होती है शाह साहब? तो मैंने कहा भाई, फकीर पिछते इसके के लोगों के सर का हेट बने, वो अपने आप को फुट मैट बना देता है कि लोग उस पर पांव रख के, अपने पांव की गंदगी उस पर रगड़ के पांव साफ करके कमरे में दाखिल होते हैं कि कमरे का कारपेट खराब ना हो। तो इंसान पहले फुटमैट बनता है। तो जब कोई शख्स फुटमैट बन जाता है तो रब उसे लोगों के सर का हेड बना देता है। कहा कि जरा आप बता दीजिए कि क्या कहना क्या चाह रहे हैं आप? तो मैंने अर्ज की कि हुजूर, किसी ने गाली दे दी तो आदमी मुस्कुरा के खामोश हो गया, किसी ने जाते जाते जूता मार दिया और आप उसकी तरफ देखें इस्तेफामिया अंदाज में, तो कहेगा वो मेरा दिल चाह रहा था कि किसी को जूता मारूं तो तुमको दे मारा, तो आदमी मुस्कुरा देता कि यार थैंक यू वेरी मच, आइंदा भी जब दिल चाहे तो आके जूता मार लीजिएगा। तो जवाब उन्होंने बहुत खूबसूरत दिया, जो मुझे पसंद बहुत आया। उन्होंने कहा शाह साहब, मैं बुजदिल नहीं कहलाना चाहता। तो इंसान को जब इल्मे लुदनी मिलता है तो उसमें आजजी पैदा होती है, दुनिया की मोहब्बत उसके दिल से निकल जाती है। वो जहां किसी शख्स के लिए 10 रुपए खर्च करना मुश्किल समझता है, जब उसको इल्म हासिल होना शुरू होता है तो तब्दीली आती है कि दूसरों पर और खासतौर पर अपने मुखालफीन पर बेदरेग पैसा खर्च कर देता है, अपनी मेहनत की कमाई मुखालफीन पर बेदरेग खर्च करता है। पहले उसको छोटे छोटे मसले परेशान कर रहे होते हैं, इल्म मिलने के बाद बड़े बड़े मसले भी वो हंस के टाल देता है। पहले छोटी से मुसीबत पर हाय हाय करता फिरता है, फिर बड़ी से बड़ी मुसीबत पर भी मुस्कुराता है। पहले कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका मसला उसके जहन में आता नहीं, सोच विचार करता रहता है, लोगों से मशवरे करता तो कहीं जाके हल मिलता है। इल्म मिलने के बाद बड़े से बड़ा मसला आता है तो अगले लम्हे जहन में खुद ही एक हल आ जाता है, तो मसले हल हो जाते हैं। ये निशानियां हैं कि इल्म मिल गया, क्योंकि याद रखिए कि इल्म से फहमो फरासत मिलती है, और फहमो फरासत मोमिन का तुर्रा इम्तियाज है। कि रब ने कुरान में डराया है कि मोमिन की फरासत से डरो कि मेरी निगाह से देखता है। तो इंसान को जब इल्म लुदनी मिलता है तो रब की आंख उसकी बिनाई हासिल होती है कि वो उसके अंदर फहमो फरासत हो जाती है उसे। ورنہ آپ اولیاء کرام سے ملیے، مجھے زندگی میں بہت سے مسند اولیاء کرام سے ملنے کا اتفاق ہوا، وہ اور بات ہے کہ میں کسی سے استفادہ کر ہی نہیں سکا کیونکہ نیت رہی نہیں کبھی میری کہ میں کبھی علم حاصل کروں گا، تو میں نے کسی ولی اللہ کو اپنی جسمانی ساخت میں اپنے آپ سے کوئی علیحدہ نہیں پایا، میری ہی طرح کے انسان دیکھنے میں تھے، میری ہی طرح کی زندگی، یا یوں کہیے میری ہی طرح کی زندگی تو غلط ہو جائے گا کہ میری طرح زندگی گزارتے تھے، کیونکہ میری ہی طرح کی زندگی تو گناہوں سے بھرپور ہے، تو وہ تو نیک لوگ ہیں، لیکن جب آپ ان کے سامنے اپنا کوئی مسئلہ رکھیں تو ایک لمحے میں آپ کو حل بتا دیں گے، اور اس انداز میں بتائیں گے کہ آدمی سوچنے لگتا ہے کہ یہ حل تو مجھے بھی آتا تھا، یہ ان کا علم ہے، ان کی فہم و فراست ہے جو علم لدنی کے نتیجے میں ان تک آئی ہے، یہ کتابوں میں جو قصے کہانی لکھے ہیں اصل میں اس میں اس نے ہمارا ستیہ ناس کیا ہوا ہے کہ وہاں کرامات کے علاوہ کوئی دکھائی نہیں دیتا، حالانکہ اولیاء کرام کرامات سے دور بھاگتے ہیں کہ ان کا راہ کھوٹا کرنے کے ذرائع بن جاتی ہیں، تو فقیر سے اس کو دعا کرنے کی مشین نہ سمجھیے، بلکہ اب یہ دعا کا ہوا قصہ تو میں عرض کر دوں کہ فقیر سے دعا کروانے کے بھی ڈھنگ ہیں، آداب نہیں کہہ رہا میں، ڈھنگ کہہ رہا ہوں، جو سمجھدار لوگ ہیں وہ فقیر کو جس طرح سے ڈھگتے ہیں وہ کمال کا طریقہ ہے، فقیر کے پاس جاتے ہیں مجالے کبھی اپنا مسئلہ بیان کر دیں تو وہ پوچھے بھی کہ کیسے آئے گا، بس حضور آپ کو دیکھنا تھا، سلام کرنا تھا، تو اب مجھے اجازت دیجئے میں چلوں، ہم اگر اپنا سوچیں، مجھے وہ آدمی پسند آئے گا جو میرے پاس ایک لمحہ ضرورت سے زیادہ نہ بیٹھے، آپ کو بھی وہی پسند آئے گا، مجھے وہ آدمی پسند آئے گا جو اپنے مسائل لے کر میرے پاس نہ آئے بلکہ جب بھی مجھ سے ملے مجھے ہنسا کے چلا جائے، اس لیے کہ مسائل تو میرے بھی بہت ہیں، میں ان کے نیچے دبا ہوا ہوں، تو کسی اور کے آدمی جو اپنے مسائل لے کے آیا ہے وہ مجھے اور غمگین کر گیا، وہ مجھے کبھی نہیں بھائے گا، تو وہی آدمی مجھے اچھا لگے گا جو آیا اور ہنسا کے چلا گیا، تو ایسی فقیر کو بھی ایسا ہی آدمی اچھا لگے گا جو آیا بڑی خوشگوار بات ایک آدھ جملہ کر کے وہیں سے کھڑا ہوا چلا گیا۔ اب اس کی میں آپ کو ایگزامپل دے دوں کہ آپ کے گھر میں دو ملازم ہیں، ایک ملازم کا رویہ یہ ہے کہ وہ، بلکہ یوں کہیے تین ملازم ہیں، ایک کا رویہ یہ ہے کہ ہر دوسرے دن وہ آتا ہے کہ صاحب آج میری والدہ بیمار ہو گئی، ان کے علاج کے لیے مجھے پیسے چاہیے، دے دیجئے، آپ دو چار چھ مرتبہ دے دیں گے، اس کے بعد آپ کے دل میں آئے گا کہ کیا مصیبت ہے، یہ روز میرے پاس مسئلہ لے کے ہی آتا ہے، یہ پھر جب وہ آئے گا تو آپ ہوں ہاں میں ٹال مٹول پہلے فوراً دے دیتے تھے جیب سے نکال کے، پھر کہیں گے اچھا کل دیتا ہوں تم کو، ٹالنا شروع کریں گے اس کو، پھر بھی اس کا یہ رویہ جاری رہے تو وہ تنگ آ کے ایک دن آپ سے یہ کہہ دے گا، آپ اس سے یہ کہہ دیں گے کہ کیا تم روز مانگتے رہتے ہو، بھائی بھاگو یہاں سے، کیونکہ یہ تو رب ہے جو ہر وقت مانگنے والوں کو بھی دیتا رہتا ہے، انسان نہیں کر پائے گا یہ کام۔ دوسرا ملازم ہے وہ بڑی تندہی سے آپ کی خدمت کرتا ہے، آپ کا ہر حکم بجا لاتا ہے، اس کی ڈیوٹی آپ کے گھر پہ صبح 6 بجے سے لے کے رات 10 بجے تک ہے، وہ ہمیشہ آپ اسے یہ پاتے ہیں کہ ڈیوٹی پہ وہ 6:05 پہ وہاں ہے اور 10:15 وہ جاتا ہے، اس دوران سارے کام دوڑ دوڑ کے کرتا ہے آپ کے، ادھر فرسٹ آئی ادھر اس نے کہا صاحب آج فرسٹ ہے سیلری دے دیجئے، ادھر 10:15 ہوئے کہتا جی میں میری چھٹی کا ٹائم ہو گیا السلام علیکم میں جا رہا ہوں، تو آپ اس کی تعریف تو کریں گے کہ بہت ڈیوٹیفل ہے، بہت ایفیشینٹ ہے، لیکن کمبخت وقت کا بڑا خیال کرتا ہے، तीसरा मुलाजिम है जो आपके यहां काम कर रहा है, आप उसको 2 बजे बुलाते हैं तो आवाज एक ही आती है, हाजिर जनाब। आप उसको दोपहर को आवाज देते हैं, हाजिर जनाब। जब भी आवाज दें एक ही जवाब आता है, जी सर। आप उसको सारा दिन काम पे लगाए रखते हैं, वो हंसता है, बड़ा खुशगवार तासुर लिए हुए चेहरे पर काम करता रहता है। आप उसको फर्स्ट आती गुजर जाती, 10 तारीख आई गुजर गई, महीना गुजर गया, तनख्वाह ही नहीं मांग रहा। 6 महीने के बाद आपने तनख्वाह दे दी तो बड़ी खुशी से ले, थैंक यू सर, चला गया। आपसे कभी सैलरी इंक्रीज करने को नहीं कहता, अपना मसला कोई बयान नहीं आपके सामने कर रहा, कुछ नहीं कर रहा। तो आप उससे पूछते हैं कि मियां बात क्या है, तुम यहां काम करते हो, न कभी तनख्वाह मांगी, न कभी कपड़े का कहा मुझसे, न तुमने कभी अपना मसला कोई बयान किया, क्या तुम्हारी जिंदगी में मिसाल नहीं? नहीं साहब, आपके होते हुए मुझे क्या मसला होगा, मैं तो आपसे प्यार करता हूं, आपकी खिदमत करके मुझे खुशी होती है। अब इन तीनों में से आपको मुलाजिम कौन सा अच्छा लगेगा? तो ये फकीर भी इंसान है, उनके अंदर भी लाइकिंग और डिसलाइकिंग के जज्बे मौजूद हैं, वो भी चिढ़ते हैं, वो भी खुश होते हैं, वो भी गमजदा होते हैं, वो भी, उनको भी खुशियां हासिल होती हैं, इंसान है। सिर्फ एक बात है कि उन्होंने अपने आप को ट्रेन कर लिया, अपने जज्बों का इजहार नहीं होने देते। तो मेरा एक काम यह है कि मैं यहां से भी, जैसे तुर्की गया जनाब हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु के मजार पे, तो 1 महीना पहले से मैंने एक बड़ा A4 साइज का स्क्रिबिंग पैड लेके उसके ऊपर लिखने शुरू किए, दुआ नंबर 1, दुआ नंबर 2, दुआ नंबर 3, दुआ नंबर 4। पूरा महीना तैयारी की, और जब मैं वहां गया तो 250 दुआएं ले गया। तो जाके मैंने सलाम अर्ज किया कि अस्सलाम वालेकुम जनाब, फातिहा पढ़ ली, उसके बाद कहा कि जनाब मैं हाजिर हुआ हूं पाकिस्तान से, ये 1-2 दुआ तो मेरे लिए कर दीजिए। और उन्होंने भी खुश दिली से कह दिया, क्योंकि फातिहा के दौरान मुलाकात हुई, कि हाँ कहो क्या है, कि ये दुआ नंबर 1 हजूर दुआ फरमा दें कि मुझे कोई 150 शलवार कमीज व्हाइट कलर का मिल जाए। कहा अच्छा, कर देता हूं। उसके बाद आ गया साहब, मुझे फेल्ट हैट का बड़ा शौक है, मैचिंग फेल्ट हैट चाहिए हर सूट के साथ। क्या अच्छा, कर दूंगा। तो करते करते जब 250 नंबर पे पहुंचा तो उन्होंने उठा के ईंट दे मारी कि तुमने क्या कंप्यूटर समझा, बटन दबाते हुए हर बटन दबाया जा रहा, दुआ की बटन दबा दिया, कंप्यूटर पे जवाब आ गया। फकीर लोग चढ़ जाते हैं, अगर उनकी उसकी नस्बत ये रवैया रखा जाए। वो एक जमाना था, मैं हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर नहीं होता था, तुर्की जाता था, दूसरे सबके खिदमत में हाजिर हुआ। एक और साहब जा रहे थे, उन्होंने मुझसे कहा मैं कहां जाऊं, तो मैंने कहा फला फला जगह चले जाओ। तो वो मुझे कहने लगे हजरत अबू अय्यूब अंसारी साहब, और मैंने छोड़ो क्या जाना तुम्हें, वो नहीं गए वहां। उसके मेरे ख्याल 2-3 महीने के बाद एक सरकारी कॉन्फ्रेंस निकल आई, मैं फिर तुर्की के विजिट पे गया, तो 2 दिन की छुट्टी ले गया कि मैं कॉन्फ्रेंस के बाद 2 दिन वहां गुजारूंगा, तो उसका ताकि TADA में क्लेम ना करूंगा और मेरे तनख्वाह में हराम शामिल ना हो। जब कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई तो मैं जाहिर है सरकारी ड्यूटी खत्म की थी, तो सरकारी खर्चे पर तो नहीं रह सकता, मैं प्रोविजन है लेकिन मैं तो नहीं रहूंगा। तो मैं एक और होटल नया बना था वहां 5 स्टार इस्तांबुल में, उसमें आ गया। तो सुबह के वक्त नाश्ता करने के मैं गया हॉल में, तो मैं जो लाइव स्टेशन था ऑमलेट के लिए उस पर खड़ा हुआ देख रहा था, वहां चीजें उन्होंने सजाई हुई थी कि जो जो ऑमलेट में आपने डलवाना है उसको बता दीजिए। तो उनको मैं देख रहा था, मेरे पीछे कंधे के ऊपर से आवाज आई, अस्सलाम वालेकुम सर। तो मैंने मुड़ के देखा, वही साहब थे जिनको रोका था मैंने। तो कहने लगे आप, मैंने कहा नहीं, मैं रात इधर शिफ्ट हुआ हूं, कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई थी तो मेरा जाती स्टे है। तो कहने लगे जुमा पढ़ने का, उस दिन जुमा था, कहां इरादा है? मैंने कहा अभी पूछ लेते हैं काउंटर से कि कहां मस्जिद है। अब वो काउंटर पे बैठी हुई खातून अंग्रेजी की उतनी ही बड़ी माहिर थी जितना माहिर मैं था, तो न उसको मेरी अंग्रेजी समझ आती थी न मैं उसकी अंग्रेजी समझ पाता था कि क्या क्या रहे हैं। तो बड़ी मुश्किल से इतनी समझ आई कि वो मुझे अयुप अयुप कह रही है। तो उससे मैंने कहा बीबी इस पे लिख दे यार। तो उसने जो कुछ लिखा वो लातीनी में था जो मुझसे पढ़ा ही नहीं जा रहा था। तो इतनी देर में एक और साहब आ गए, उन्होंने उससे टर्किश में पूछा कि क्या ये क्या तुम्हारे साथ सर खपा रहा। तो उन्होंने तर्जुमा करके बताया कि ये कह रही है कि 12 बजे जुमा शुरू होगा, हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अनहु की मस्जिद में। वो जनाब हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अनहु को सिर्फ अय्यूब कहते हैं। तो घड़ी देखी, बहुत कम वक्त था, उससे कहा गाड़ी मंगवा दो फौरन। तो हम सीधे गए अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अनहु के यहां। तो वो मैं चूंकि गया था तो आदाब तो पूरे जो एटिकेट्स हैं वो तो ऑब्जर्व होने चाहिए। तो सबसे पहले मैं हजरत अबू अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ। तो फातिहा पढ़ने के दौरान जो कुछ सलूक उन्होंने मेरे साथ किया वो ऐसा कमाल का सलूक था कि मैं पानी पानी हो गया कि ये हस्ती क्या चीज है। तो फिर खुद ही ख्याल आया कि अगर ये इतने अजीम ना होते तो ये मेजबान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों होते। तो वो जो मैं ना खुद हाजिर हो रहा था ना इनको आने दिया, तो ये उन्होंने अखलाक की मार मारी है कि देखो वो तुम घटिया इंसान हो और ये मैं अजीम इंसान हूं, तुम में और मुझ में बस इतना ही फर्क है कि तुम मेरे यहां आए हो, मैं मेहमान समझ कर तुम्हारे साथ सलूक क्या कर रहा हूं, और तुम मेरे पास आने से खुद भी इनकारी थे और दूसरों को भी रोकते थे। तो ऐसा जूता अखलाक का पड़ा। तो वो उसके बाद जब मैं चलने लगा इजाजत मांगी कि हजूर मुझे इजाजत है, मैं मुझे जुमा पढ़ना है, तो फरमाया कि ठहर जाओ एक मिनट। तो अब मैं सोच रहा था कि अब क्या करेंगे मेरे साथ सलूक। तो इतनी देर में एक इंतहाई बूढ़ा शख्स आया जिसने कोई कम से कम 6.5-7 किलो वजनी चाबियां उठाई हुई थी सैकड़ों की तादाद में, वे थे रिंग्स लोहे के उनमें परोई हुई। तो मेरे कंधे पर टैप किया उसने इधर आओ मेरे साथ। तो मैंने लिंक कर लिया कि जो फरमाया था कि एक मिनट रुको वो यही किस्सा था। तो वो ले गया, ले जाके उसने एक दीवार में सुराख सा था उसमें चाबी लगा दी। तो चाबी लगाने के बाद उसने जो खोला तो पता लगा कि वो ताकचा है जिसके ऊपर उन्होंने इस तरह से पेंट किया हुआ है कि दीवार का हिस्सा दिखाई देता है, पता नहीं चलता यहां ताकचा। तो उसने लाइट ऑन की तो अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाए मुबारक का इम्प्रेशन था जिसके ऊपर सोने का खोल चढ़ा हुआ था। तो एक अल्लाह की इनायत यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक अगर कोई चीज है तो एक सेकंड में पता लग जाता कि असली है। तो वो उसको खोला जो ही उसने तो साफ पता चल गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के पाए मुबारक का इम्प्रेशन है। तो मैंने फातिहा वहां पढ़ी। जब चलने लगा तो उसने मुझे गर्दन से पकड़ा और मेरा सर उस ताकचे में दिया कि इसको किस करो। ओह, मैंने कहा अच्छा थैंक यू वेरी मच जनाब, आप वाकई इस काबिल थे कि मेजबान रसूल होते, ये इस दर्जे की मेहरबानी। तो फकीरों से अगर मांगा ना जाए कुछ तो इसी तरह मेहरबानियां होती हैं।